शांति, गुड मॉर्निंग। अमृत वेला किस किस ने किया? पूरी क्लास पास है ये तो। इनमें से वॉकिंग में कौन कौन गए थे? लगभग सभी गए थे। बहुत अच्छा किया, शुरुआत बहुत अच्छी है आपकी कि मिस नहीं किया, लेकिन जैसे कहा ना, गाड़ी बहुत आगे चली गई, कंट्रोल नहीं कर पाए कि 7 बजे यहाँ पहुंचना है ना? जब मैं चाहूँ रोकना तब गाड़ी रुके, जब मैं चाहूँ चलना तब गाड़ी चले, पर गाड़ी को ब्रेक लगाने में थोड़े से क्या कहेंगे और उसमें शायद आपका भी वो नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ गाइड होगा और आपको अंदाज नहीं होगा कि कितना आगे जाने से कितना समय लगेगा। तो अभी आज तो अंदाज लग गया ना कि इतना दूर जाने से यहाँ टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो कल आप खुद ही समझदारी से गाइड भाई से कहना हमें इससे आगे नहीं जाना है, एग्जैक्ट 7 बजे यहाँ पहुंचना है। इसका मतलब आप वॉकिंग से आएंगे तो थोड़ा फ्रेश, आपको फ्रेश भी होना होगा, वो सब टाइम कैलकुलेट करके आपको लौटना है, 7 बजे यहाँ पहुंचना है, ठीक है ना? हाँ, तो अभी का हमारा सेशन है सबसे पहला कि हम स्वयं को जाने कि हम कौन हैं, और वो बताने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी। हम करतल ध्वनि से, कल शशि दीदी ने हमें सिखाया करतल से नहीं करेंगे, एक हाथ से, क्योंकि साइलेंस की भी अनुभूति करनी है, तो एक हाथ से हम ये अभ्यास डालेंगे। क्योंकि दीदी ने क्या कहा, कल जितनी तालियां बजाई बजाई और लास्ट डे जितनी बजाना है बजाना, लेकिन बाकी के दिनों में एक हाथ की ताली है ना? तो एक हाथ से हम दीदी का स्वागत करें पुनः। दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, आप राजस्थान कोटा की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही आपने MBBS की डिग्री प्राप्त की और राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आपने फिर प्रैक्टिस आरंभ की, डूंगरपुर, कोटा, इंदौर में भी और माउंट आबू में भी, जो ग्लोबल हॉस्पिटल है, 1901 से 2000 तक आपने वहां पर भी अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद 2001 में जब गवर्नमेंट ने भी उस ईयर को वुमेन एम्पावरमेंट का डिक्लेरेशन किया था, उस कैंपेन में आपने पार्टिसिपेट किया और तब से आप कंप्लीटली इस हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आरंभ के 6-7 वर्ष आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि संस्था की उन दिनों में जो हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी दादी प्रकाश मणि जी, उनके आप पर्सनल फिजिशियन के रूप में अंग संग रहते थे, तो फिजिशियन के रूप में सेवाएं भी दी और साथ साथ उनकी पालना भी ली। और उसके बाद जैसे आप डॉक्टर है ही, तो जैसे अभी अभी आपने समाचार सुना कि हमारी मोहिनी दीदी जी भी अपना भौतिक देह त्याग कर आगे की यात्रा पर चली गई, तो डॉक्टर होने के नाते हमेशा उनके अंग संग रहते हैं और जब भी किसी प्रकार की जरूरत है अपना योगदान देते हैं। तो ये तो ऐसे डॉक्टर आप अपना योगदान देते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे राजयोग टीचर भी हैं, तो ज्ञान का प्रसारण करने के लिए भी आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं। विशेष करके आपके टॉपिक्स होते हैं एंगर मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, इस प्रकार के वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि खास आप हमारी जो विंग है विमेन्स विंग, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो इस प्रकार के वैरायटी विषयों को लेकर आप हेडक्वार्टर में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और समय समय पर वैरायटी प्रोग्राम्स जो यहाँ चलते हैं रिट्रीट्स के विंग्स में, उसमें भी आप ऐसे फैकल्टी मेंबर अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे अनुभवी दीदी आज हम सबके बीच में हैं, तो हमें बताएंगे कि आखिर भी हम हैं कौन। हमने बचपन में नर्सरी में सबने गीत गाया है, भले हम नर्सरी में न गए हो, हमारे बच्चे जाते हैं, आस पड़ोस के जाते हैं तो गाते हैं, हम भी सुनते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो वो स्टार को देखकर हमारे अंदर में वो आश्चर्य होता है कि आखिर वो क्या चीज है। लेकिन आज हमें दीदी बताएंगी यहाँ पर भी एक ट्विंकल ट्विंकल स्टार है, और उसको हम जानेंगे तो पता चलेगा कितना गजब का ये सितारा है जो पूरे जीवन को चला रहा है, जीवन को चला रहा है, लेकिन हम उससे बेखबर है। तो उनसे हमें बेखबर अब हम ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं, तो उसकी जानकारी आज हमें आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी देंगे। तो अभी हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी से।
ओम शांति। इस विद्यालय की मुख्य शिक्षा सहज राजयोग है, और योग के विषय में आज वर्तमान समय में हम काफी सुनते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया है। खासकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये प्रयास किया संयुक्त राष्ट्र संघ में, और सारे विश्व ने उसे मान्यता प्रदान की, क्योंकि योग से हमें जीवन में कई लाभ हैं। उससे मन शांत होता है, स्वस्थ होता है, और उसके साथ साथ हमारा तन भी स्वस्थ होता है। तो स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और योग भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया शब्द नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ ऋषि मुनि संत योग का अभ्यास करते रहे, और इस योग के लाभ वो अपने जीवन में अनुभव करते थे। लेकिन वर्तमान में योग लोकप्रिय हो रहा है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में, और उसका कारण है आज की जो जीवन शैली है वो तनाव से भरी हुई है, भागदौड़ की जिंदगी है, और जीवन में चिंता, भय, निराशा बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। तो कितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, विज्ञान ने कितना भी विकास किया है, लेकिन उतना ही जीवन से सुख शांति, सच्ची सुख शांति समाप्त होती जा रही है। तो जरूर ऐसा कोई साधन हमें चाहिए जो हमारे मन को शांत कर सके। विज्ञान के साधनों में मन को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, अध्यात्म में वो शक्ति है, और इसीलिए जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ योग संस्कृत भाषा का शब्द है जो युच धातु से आया है, और उसका अर्थ होता है संबंध, मिलन, याद। संबंध दो के बीच में होता है, जैसे हम वियोग कहते हैं तो वियोग का अर्थ होता है अलग हो जाना, संबंध का अर्थ है मिलना। ऐसे ही अगर हम सहयोग कहते हैं तो जब दो मिलकर कार्य करते हैं तो वो सहयोग होता है। संयोग हम कहते हैं, इसका अर्थ अचानक कोई मिल जाता है या अचानक कोई प्राप्ति हो जाती है, इसको हम संयोग कहते हैं। तो ये कई स्तरों पर हो सकता है। भौतिक स्तर पर योग हम कहेंगे जब दो वस्तुओं को हम मिलाते हैं, मिलना है अर्थात दो अवश्य होंगे। तो मानो हम दूध में चीनी मिलाते हैं या दही में चीनी मिलाते हैं, वो मीठा हो जाता है, तो वो भी एक योग है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, उससे पानी बनता है, वो भी एक यौगिक कहलाता है। दो तत्व मिले और हमें पानी यौगिक मिला। ऐसे ही अगर हम दवाइयों को मिलाते हैं, आयुर्वेद में कई दवाइयों को मिलाया जाता है, तो उसे भी योग कहते हैं। तो ये भौतिक वस्तुओं का मिश्रण योग है। दूसरा स्तर है मानसिक स्तर। जब हम मन से किसी व्यक्ति को याद करते हैं, मन से किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या हम कर्म में अपने मन को लगाए हुए होते हैं, तब हमारा मन जहाँ जुड़ा हुआ है वो मन का योग है। अगर व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा योग हो गया। वस्तु की इच्छा कर रहे हैं तो उस समय उस वस्तु से हमारा योग हो गया। और कर्म में जब मन लगा हुआ है तो कर्म में हमारा योग हो गया। इस स्तर पर हम सभी योगी हैं, क्योंकि हमेशा हम मन को किसी ना किसी स्थान पर लगाए हुए ही होते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं तो इसका अर्थ है जब मन व्यक्ति वस्तु कर्म से निकलकर ईश्वर में लग जाता है, तब हम उसे राजयोग कहते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है, तो सर्वश्रेष्ठ संबंध, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध, वो ईश्वर का संबंध है। इसीलिए हम उसे राजयोग कहते हैं। राज शब्द श्रेष्ठता का प्रतीक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए वो योग राजयोग कहलाता है। तो हम सभी परमात्मा को याद तो करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि उनसे हमारा संबंध हो, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मन ईश्वर में नहीं लगता है, मन भटक जाता है। किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं तो शायद हमारी ये शिकायत नहीं होती है, लेकिन ईश्वर की याद में मन लगना बहुत मुश्किल है। तो क्या कारण है भगवान की याद में हमारा मन नहीं लगता है? इसका सबसे मुख्य कारण है अज्ञान। परमात्मा के विषय में हमें सत्य ज्ञान नहीं है। हम जो कुछ भी आज ईश्वर के प्रति पूजा पाठ आराधना करते हैं, वो हमारे परंपरा श्रद्धा के अनुसार करते हैं, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसमें क्या सत्य ज्ञान है? इसका हमें अज्ञान है, इसीलिए मन ईश्वर में नहीं लग पाता। जैसे किसी व्यक्ति को हम याद नहीं कर सकते यदि हम उससे परिचित नहीं हैं। कर सकते हैं, हम जिन्हें जानते हैं उन्हें ही हम याद कर पाते हैं। खासकर हमारे संबंधी समीप मित्र होते हैं, वो हमारी यादों के दायरे में होते हैं। नहीं तो दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, हम सबको याद तो नहीं करते हैं, कर पाते हैं? क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, उसके कारण मन परमात्मा की याद में नहीं लग पाता। और उसके साथ साथ हमें स्वयं का भी अज्ञान है, हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं। तो ये भी एक हमें आश्चर्यचकित कर सकता है कि क्या हम सचमुच अपने आप को नहीं जानते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तभी कहा नो दाई सेल्फ। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है कि जब वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तब वो विवेकानंद नहीं थे, तब वो नरेंद्र थे, और रामकृष्ण परमहंस अंदर थे, द्वार बंद था, तो उन्होंने बाहर से ही उसे खटखटाया। तो उन्होंने अंदर से ही पूछा कौन है, जैसे स्वाभाविक पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो जिज्ञासा भाव, कई बार सचमुच हम एक भ्रम में होते हैं, क्या सचमुच यही भौतिक शरीर तक ही हमारा अस्तित्व है, या उससे परे भी हमारा कोई अस्तित्व है। तो ये केवल भौतिक शरीर जिससे हम परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा व्यवसाय ये है, हम आपसे पूछेंगे आप कौन है तो हम क्या जवाब देंगे, यही जवाब देंगे, या मेरे जीवन की उपलब्धियां ये है, हमारा स्थान ये है, हम यहाँ निवास करते हैं। तो ये सब परिवर्तनशील है। इस संसार में जब हमने जन्म लिया तब हमारा नाम नहीं था, कुछ समय के बाद हमारा नाम रखा गया, उसके पहले भी तो हम थे। व्यवसाय भी कितने वर्षों के बाद शुरू होता है, उसके पहले भी तो हम थे। जो स्थान पर जन्म होता है वो स्थान बदल जाता है, हमेशा हम उस स्थान पर निवास नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर मैं कौन हूँ? तो ये बाह्य जगत के संबंध में हमारा परिचय है, सांसारिक परिचय है। हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते हैं, हमारा अंतर जगत भी है। अंतर जगत में विचार, भावनाएं, स्मृतियां और वृत्तियां हैं, और ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म है अर्थात हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसे हम अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसे रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं। वो चेतना इस भौतिक शरीर को जीवन दे रही है, उसे हम आत्मा कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में उसे आत्मा कहा गया, और आत्मा का ज्ञान हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारे यहाँ गीता में पहले अध्याय में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भ्रम से, अपनी उलझन से बाहर निकालने के लिए जो ज्ञान दिया वो आत्मा का ज्ञान था। जब अर्जुन को मोह हो रहा था और वो युद्ध नहीं करना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने क्या समझाया कि जिन्हें तुम देख रहे हो वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। इन्होंने अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण करके पाठ बजाया है, तुम इनके जन्मों को नहीं जानते हो, मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ने इस शरीर को एक वस्त्र की तरह धारण किया है, लेकिन आज तक हमने सिर्फ सुना है। सत्संग में, प्रवचन में हम कहेंगे हम ये सुनते आए हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आत्मा का ज्ञान, उसे हम प्रयोग करें, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा की सत्य समझ पूर्ण रूप से हमारे पास नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को चला रही है, तो कई बार ये सवाल आता है कि हमें दिखाई नहीं देती है तो कैसे हम समझें कि आत्मा इस शरीर को चलाती है। तो संसार में बहुत सारी चीजें हम सिर्फ अनुभव से जानते, देखकर नहीं जानते। ये माइक चल रहा है, इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी है, ये कंप्यूटर चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते हैं, देखते हैं। जो भी चीजें संसार में एनर्जी लेवल पर हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। आज हम मोबाइल से बात करते हैं, इनविजिबल कम्युनिकेशन है, दिखाई देता है कैसे बातचीत हो रही है, मेरे सेट से साउंड वेव्स निकलती हैं, दूसरे के सेट तक ट्रैवल होती हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं। कुछ दिखाई देने वाला तो नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल हो रही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। वो टॉवर्स लगे हुए हैं जिनके द्वारा वो तरंगे उस स्थान तक पहुंचती हैं, लेकिन हमारी आंखों की क्षमता से परे है। खुशबू है हमें दिखाई नहीं देती है, हवा है हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अनुभव से हम जानते हैं। हमारा मन आत्मा की ही सूक्ष्म शक्ति है। मन को देखा है किसी ने? देखा है, पर क्या कहेंगे, मन नहीं है, मन है या नहीं है? तो आत्मा को नहीं देखा है तो आत्मा है या नहीं है? तो आत्मा को भी हम अनुभव से जानते हैं। ये जीवन ही आत्मा का प्रमाण है। हम जानते हैं कि शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हमारे सभी अंग कार्य कर रहे हैं। जैसे जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक ये सब साधन चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी गई माना सब बंद। हम कितना भी कोशिश कर लें, फिर हम इस माइक को नहीं चला सकते, हम पंखे को नहीं चला सकते। तो जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक दिमाग सोच रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हृदय पंप कर रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं। और आत्मा निकल गई, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो सब स्टॉप हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई फीलिंग नहीं, आंखें खुली हैं फिर भी देख नहीं रहे, हार्ट है फिर भी वो पंप नहीं कर रहा है। और फिर हम क्या कहते हैं, उस मृत शरीर से अब हमें प्रेम नहीं होता है। देखो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को लाते हैं, सीरियस पेशेंट है, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि उसे हम बचा लें, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बचा पाते। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पेशेंट को ले जाओ, अब क्या कहेंगे, बॉडी को ले जाओ। तो अब वो पेशेंट नहीं है, अब वो बॉडी है। तो बॉडी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मन के कोई विचार भाव अब उसके अंदर नहीं है, अब वो कोई इच्छाएं उसके अंदर नहीं है, तो वो सिर्फ एक बॉडी रह गई। और उसको हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन, दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, वो डिके होने शुरू हो जाएगी। और एक मृत शरीर भय भी पैदा करता है। देखो, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, वो 100 वर्ष तक भी अगर जीवित रहता है तब ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल गई तो आत्मा ही इस शरीर को जीवन दे रही है, जीवन देने वाली शक्ति है। और आत्मा की मुख्य शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, इसे प्रकृति कृत कहते हैं। और इसीलिए 5 तत्व ही इस शरीर की आवश्यकता है, वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। हम पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, क्योंकि पानी हमारे शरीर की बनावट में 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, तो हमें पानी ही चाहिए। अगर हमें कोई और लिक्विड दे दे, कोई हमें पेट्रोल दे दे या डीजल दे दे, केरोसिन दे दे कि आप ये पी लो प्यास लगी है, तो क्या उससे हमारी प्यास बुझेगी और या वो हमारे लिए जहर हो जाएगा? हमें पानी ही चाहिए, क्योंकि शरीर की बनावट में पानी ही है। ऐसे ही श्वास लेने के लिए हमें ऑक्सीजन ही चाहिए। ऑक्सीजन हमारे शरीर की प्रकृति में उसे जीवन दे रही है। ऑक्सीजन अगर 3 से 5 मिनट नहीं मिली तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लें या नाइट्रोजन इनहेल कर लें या कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लें तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ऑक्सीजन ही चाहिए। हमें भोजन चाहिए क्योंकि भोजन अग्नि पृथ्वी का मेल है, वो शरीर की आवश्यकता है, वो हमें जीवन दे रहा है। ये तत्व शरीर की आवश्यकता है। ऐसे ही आत्मा 7 गुणों से बनी है, जिसे हम आत्मा के निजी संस्कार कहते हैं, ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता और शक्ति। आत्मा सत्वगुणी है और यही आत्मा की आवश्यकता है। हम सब जीवन में यही चाहते हैं। हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासा, ये हमारा स्वभाव है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमे अस्तो मां सद्गमे मृत्यु मां अमृत गमे। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, कौन सा अंधकार? ये रात और दिन का अंधकार नहीं, लेकिन जो अज्ञान अंधकार मेरे जीवन में है उससे सत्य ज्ञान के प्रकाश की ओर। ऐसे दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, आज तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है और कितना विज्ञान ने हमें सुविधा दी है कि अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप कुछ क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो तुरंत आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ज्ञान चाहिए, तो कौन सा ज्ञान? कहते हैं आज दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं अगर उन्हें जला दिया जाए तो उससे अग्नि अधिक होगी, प्रकाश कम होगा। अग्नि अधिक होगी उसका भाव क्या है कि वैसे कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो मनुष्य के जीवन में नम्रता लाए। लेकिन आज विद्या मनुष्य में अहंकार पैदा करती है और जब अहंकार है तो क्रोध आता है, और क्रोध क्या है, इसकी तुलना अग्नि से की गई है, क्रोध अग्नि कहते हैं। लेकिन जब जीवन में सत्य ज्ञान आ जाता है तब हमारे जीवन में शांति सुख प्रेम का अनुभव हम करते हैं। तो इसीलिए हम ईश्वर से उस सत्य ज्ञान की कामना करते हैं जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होता है। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, प्रेम आत्मा का स्वभाव है। हम सभी अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं। जहां प्रेम है वहां जीवन सहज लगती है, और अगर प्रेम के विपरीत है, मानो कोई हमारा अपमान करता है, हमसे दुर्व्यवहार करता है, या जो भी हम पर क्रोध करता है, तो क्या वो हमें पसंद आता है? हमारी मजबूरी है तो हम चलाएंगे, और अगर मजबूरी नहीं है तो हम उस व्यक्ति के पास दोबारा जाना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। और अगर लंबे समय तक ऐसा होता है तो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं, घर को भी छोड़ देते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से मिसाल हैं, जब लोगों के पास बहुत धन है, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो वो धन को भी छोड़कर चले गए जहां उन्हें प्रेम मिला, महलों तक को छोड़कर चले गए। लेडी डायना का नाम आपने सुना है, वो प्रिंस चार्ल्स की महारानी थी, प्रिंसेस थी वो, लेकिन उसे उस इंग्लैंड के महल में भी जब प्रेम अनुभव नहीं हुआ तो उसने उसका भी त्याग कर दिया। कई बार बच्चे माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि माता पिता सब दे पा रहे हैं बच्चों को जो चाहिए, उनको धन की कमी नहीं है, लेकिन समय और प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बच्चे जहां प्रेम मिलता है वहां चले जाते। प्रेम आत्मा का स्वभाव है और ऐसे ही सुख आत्मा का स्वभाव है। हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, सुख में जीवन व्यतीत होता है तो सहज लगता है जिंदगी कहां गुजर गई पता नहीं चलता, और हम कामना करते हैं और आयु हमारी लंबी हो। लेकिन दुखी होता है इंसान तो कैसा लगता है, चार दिन भी भारी लगते हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। तो दुख के दिनों में हमें ईश्वर याद आता है, हम पूरा प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे दुख दूर हो जाएं। दूर हो गए तो ठीक, और नहीं तो हम क्या कहने लगते हैं, हे ईश्वर ऐसे जीवन से तो किसी ने कहा उठा ले या मुक्ति दे दो जो भी है। और नहीं समाप्त होते दुख तो लोग क्या करते हैं, भगवान तू नहीं उठाता तो चलो मैं ही अपने आप अपने जीवन को समाप्त कर देती हूँ या कर देता हूँ, ऐसे समाचार आए दिन अखबारों में होते हैं। तो एक सुखी इंसान कभी ऐसा कल्पना में भी सपने में भी नहीं सोचेगा, लेकिन एक दुखी इंसान ऐसा करते हैं, क्योंकि दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, सुख आत्मा का स्वभाव, वो सदा सुख में रहना चाहती है, सिर्फ शांति चाहिए हमें। किसी को अशांति पसंद आती है, हाँ चलो होती है अशांति, हमें सहन करनी पड़ती है वो ठीक है, लेकिन पसंद हम शांति करते हैं। और इसीलिए ऐसे स्थानों पर जाना, ऐसे लोगों से मिलना जिससे हमें शांति मिलती है, हाँ विशेषकर लोग गुरु के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है शांति बाजार में नहीं मिलने वाली है। बाजार में जाके खरीदेंगे हमें इतने किलो शांति दे दो मिल जाएगी, हमें पता है ईश्वर शांति का दाता है, वो शांति का सागर है, उसकी याद से हमें शांति मिलेगी। तो सुख शांति प्रेम सुख आनंद ये आत्मा के निजी गुण है, ये मन की स्थिति है, बाहर से हमें नहीं मिलते हैं। मन यदि सुखी है, मन यदि शांत है, तो जो भी प्राप्तियां हमें हैं जिनके भी साथ हम रहते हैं वो हमें सुख देते हैं, वो साधन हमें सुख देते हैं, वो व्यक्ति हमें सुख देते हैं। मानो आप किसी पार्टी में जाते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप, आजकल तो पार्टी का बहुत रिवाज है, और पार्टी में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है, हम आनंद ले रहे हैं उसका, और उसी समय मुझे बुरी खबर मिलती है कि आपका सो एंड सो, आप बुरी खबर कुछ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु हो गई या उसकी दुर्घटना हो गई या जो भी, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। अब मैंने वो खबर सुनी, उसके बाद क्या अब मुझे आनंद आ रहा है पार्टी में, वही पार्टी है वही स्वादिष्ट भोजन है, भोजन का स्वाद नहीं बदला है, क्या बदल गया, मेरा मन बदल गया। अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं। तो वो मुझे कब तक सुख दे रही थी, जब तक मेरा मन सुखी था। जैसे ही मेरा मन बदला वही सुख देने वाली चीजें अब मुझे सुख नहीं दे रहे। और इसीलिए हम डनलप के गद्दे पर भी सोते हैं, बहुत अच्छा हमारा घर है, लेकिन अगर मेरा मन अशांत है तो मुझे उस पर भी उसे मुझे नींद नहीं आती है। और मन शांत है तो इंसान कहां भी सो जाए गहरी नींद सो जाता है। तो ये मन की स्थिति है, ये हमारे निजी गुण है। कहते हैं शांति हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, मन में श्रेष्ठ संकल्प है, मन में सकारात्मक संकल्प है, मन में शुद्ध संकल्प है, वो हमें शांति का अनुभव कराते हैं। हम आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करते हैं वो हमें शांति का अनुभव कराते हैं। तो शांति आत्मा का स्वभाव है और पवित्रता भी हमारा स्वभाव है। पवित्रता अर्थात मन की शुद्धता। जो व्यक्ति चरित्रवान होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन जो किसी भी तरह से छल कपट करते हैं या बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, क्या वो हमें पसंद आते हैं? पसंद आते हैं? नहीं पसंद आते। एक संत है, उनके आगे हम झुक भी जाएंगे, लेकिन एक चोर डाकू है, हम उनसे नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आत्मा का निजी स्वभाव नहीं। शायद हम उतने ईमानदार नहीं होंगे, शायद हम भी उतना सत्य के रास्ते पर चलने वाले नहीं होंगे, लेकिन पसंद हम क्या करते हैं? हम किसी को धोखा देते होंगे, लेकिन मुझे कोई धोखा दे, पसंद आएगा? भले हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पसंद क्या आता है? सच्चाई, ईमानदारी और चरित्रवान होना ही हमें पसंद आता है। मेरे जो साथी हैं, जीवन साथी हैं, वो किसी भी रूप में अगर किसी अन्य के साथ संबंध रखते हैं, हमें पसंद आता है। तो चरित्रवान होना ये हमारा स्वभाव है, निजी स्वभाव है, जिसे हम स्वाभाविक रूप से पसंद करते हैं। ऐसे ही शक्ति हमारा स्वभाव है, हम भगवान से शक्ति की कामना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी भी हम कमजोरी नहीं मांगते भगवान से। मंदिर में जाकर के कभी कमजोरी मांगी है हमने? तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से शक्तिशाली होना चाहते हैं। और अगर कमजोरी आती है तो हम प्रयास करते हैं कि हमारी वो कमजोरी दूर हो। तो ये आत्मा के निजी गुण आत्मा में ही है ना। ये इसी तरह से है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। एक बार ऐसे ही एक किसान था, उसके पास जो जमीन थी उसमें वो खेती करता था, लेकिन वो बंजर जमीन थी तो कुछ उपज होती ही नहीं थी। वो कर्ज लेता था कि किसी भी तरह से मैं मेहनत करूं, अधिक से अधिक इसमें खेती करूं, लेकिन जब नहीं खेती हुई तो वो कर्ज में डूब गया। तो इतना दुखी था कि उसने सोचा कि मैं अपना ये कर्ज तो नहीं चुका सकता हूं, तो मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर देता हूं। जैसा हम सुनते हैं आजकल ऐसा होता है कि अकाल पड़ता है। अभी भी महाराष्ट्र में इस बार अकाल था, तो कई किसान उसके कारण आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे विचार जब उसके मन में चल रहे थे, वो अपनी खेती की जमीन पर ही बैठा हुआ था सिर पकड़ के, तो कुछ लोग सर्वे कर रहे थे वहां पर, कुछ इंजीनियर थे जो सर्वे कर रहे थे। और वहां पर उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट रखा और उनको लगा कि इस जमीन में कहीं कुछ माइल पर तेल हो सकता है। तो उन्होंने उस किसान से पूछा, ये तुम्हारी जमीन है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि हम इस जमीन पर कुछ सर्वे करना चाहते हैं, अगर तुम हमें इजाजत दोगे तो हम तुम्हें कुछ धन देंगे। तो उसने कहा कि अवश्य, मेरे को तो धन चाहिए, आप भले ही इस जमीन पर सर्वे कीजिए। तो उन्होंने किया तो उनको पता चला कि कुछ मील पर काफी गैरल तेल, मतलब एक दिन में हजारों गैलन तेल इस जमीन से निकाला जा सकता है, इतना तेल इस जमीन के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये जमीन बेचोगे? अगर तुम हमें बेचोगे तो हम तुम्हें लाखों जो इसकी कीमत है वो हम दे देंगे। तो उसने कहा, मेरे लिए ये बंजर जमीन है और इससे अगर मुझे लाखों रुपए मिल जाते हैं तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। तो उसने तुरंत उनको वो जमीन बेच दी। अब जब तक उसे ये ज्ञान नहीं था कि इस जमीन के अंदर इतना खजाना है जो उसे इतना धनवान बना सकता है, तब तक वो कितना निराश, उदास, दुखी अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच रहा था। और जैसे ही उसे वो खजाने का ज्ञान हुआ, जीवन बदल गया, वो प्राप्ति हो गई। ऐसे ही इतना अद्भुत वो खजाना, गुणों का खजाना आत्मा के अंदर विद्यमान है, लेकिन हमें अज्ञान है और इसलिए हम उसका अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम आत्मचिंतन करते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तब हम उन प्राप्तियों को अनुभव करने लगते हैं। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन अंग की तरह हैं। जैसे शरीर अनेक अंगों से बना है, सभी अंग मिलकर इस शरीर को बनाते हैं। केवल हार्ट को हम शरीर नहीं कहेंगे, केवल लंग्स को हम शरीर नहीं कहेंगे, केवल ब्रेन को हम शरीर नहीं कहेंगे, सभी अंग मिलकर इस शरीर को आकार दे रहे हैं। ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन अंग हैं आत्मा के। मन विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है, भावना शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, विश्लेषण शक्ति है, तर्क शक्ति है, परख शक्ति है। संस्कार, जो कर्म हम करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, उसे हम संस्कार कहते हैं। तो मन की शक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, ये कहा गया। जन्म से कोई अच्छा भी नहीं होता है और जन्म से कोई बुरा भी नहीं होता है। व्यक्ति के विचार जिस दिशा में चलते हैं वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अगर मेरे विचार श्रेष्ठ ऊंचे हैं तो मेरी जीवन भी श्रेष्ठ होगी। अगर मेरे विचार साधारण हैं तो मेरी जीवन भी साधारण, कर्म साधारण होंगे। अगर विचार बुरे हैं तो कर्म बुरे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने बुरा सोच लिया तो हम बुरा कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि हर कर्म का बीज एक विचार है। कोई भी कर्म विचार से शुरू होता है, और इसीलिए कहते हैं कि जन्म से कोई संत भी नहीं होता है और जन्म से कोई अपराधी भी नहीं होता है। व्यक्ति के विचार ही उसके जीवन को दिशा देते हैं, और इन विचारों की गति इतनी तेज होती है, एक सेकंड में मन कहां से कहां चला जाता है। आप यहां बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, मन से भी बैठे हों ये कोई आवश्यक नहीं है। कितनी बार मन इस हॉल से बाहर गया होगा, कितनी ही बार आप बॉम्बे भी गए होंगे, और फिर क्योंकि मन को जाने आने में कितना समय लगता है, एक सेकंड में बॉम्बे पहुंच गए, मैंने बॉम्बे बोला, चलो मैंने घर बोला, घर पहुंच गए सभी, और मैं कहूं वापस यहां आ जाओ तो मन की गति इतनी तेज, इसको कहते हैं प्रकाश की गति से भी तेज गति वाला हमारा ये मन है। तो मन में एक मिनट में, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार 25 से 30 विचार चलते हैं, और सारे दिन में हम 25,000 से 30,000 विचार करते हैं। सामान्य स्थिति में जब हम टेंशन में होते हैं तब हमारा मन की स्पीड बढ़ जाती है, तब हम 40,000 से 50,000 तक विचार करने लगते हैं। तो सामान्यतः चार प्रकार के विचार हम पूरे दिन भर में करते हैं। सबसे अधिक विचार होते हैं हमारे कार्यों से संबंधित, जिन्हें हम आवश्यक विचार कहते हैं, नेसेसरी थॉट्स। जैसे मैंने कहा, बिना सोचे हम कोई कर्म नहीं करते हैं। 70% विचार हमारे आवश्यक विचार हैं। आपको सबको यहां आना था तो जरूर पहले एक प्लानिंग रही हमारी कि हमें आवू जाना है, तभी हमने वो कर्म किया। भूख भी लगी होगी तो भी एक थॉट आएगा, भूख लगी है, तब जाकर के हम भोजन करने का सारा प्रयास करेंगे। तो नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक कर्मों के विचार। जब हम फुर्सत में होते हैं, जब हम कोई कर्म नहीं कर रहे, तभी भी मन तो सोच रहा है, मन फुर्सत में नहीं होता है, तब हमारे मन में वेस्ट थॉट्स चलते हैं। वेस्ट थॉट्स मतलब फालतू विचार, इधर इसके उसके, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसे किया। ज्यादातर बीती हुई बातें, जो घटनाएं हो गई जीवन में, उनको हम सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बीत गया वो पास्ट इज हिस्ट्री, लेकिन अगर हम वर्तमान में भी बीती हुई बातों को सोचते हैं तो क्या होता है, अगर उस समय मुझे उससे दुख पहुंचा तो मुझे आज भी वही बातें सोचकर दुख पहुंच रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, राई को पहाड़ बना रहे हैं, क्योंकि बार 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 जब हम सोचेंगे, जैसे जब वो घटना हुई होती है इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, लेकिन हम उसे कितना सोचते हैं उतना उसे हम बड़ा रूप देते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं। हाँ, ये मैं पकड़ के रखती हूँ हाथ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे 10 घंटे पकड़ कर रखूंगी तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और पकड़ लूंगी तो हाथ सुन होने लग जाएगा, और पकड़ लूंगी तो मेरा हाथ पैरालाइज हो जाएगा, है ना। किसी भी बात को मैंने मन में पकड़ के रख लिया, क्या होने वाला है, वो मुझे जीवन में दुखी देने वाली, टेंशन पैदा करने वाली है, मन को दर्द देने वाली है। ऐसे ही कुछ लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा, आज कितनी चिंताएं हैं मनुष्य के जीवन में, और यदि वो हम भविष्य की चिंता वर्तमान में करते रहते हैं तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। तो इसीलिए कहते हैं फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज गिफ्ट। ये प्रेजेंट एक गिफ्ट की तरह है, जीवन जीने की कला है, आज में जियो। जो स्ट्रेस फ्री लाइफ सिखाते हैं ना, वो हमें यही सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही तनाव मुक्त होना है। उत्काल को, जो पास्ट है उसको लेट गो करें, हो गया सो हो गया, वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है यदि हम उसे यूज करें प्रेजेंट में, अगर हमें कोई सावधानी रखनी है भले रखें, और भविष्य के लिए कभी भी वर्तमान में चिंता ना करें, भले योजना बनाएं उसकी, लेकिन आज वर्तमान यदि हमारा श्रेष्ठ है तो भविष्य भी श्रेष्ठ होने वाला है। फिर ये देखा गया, तीसरे प्रकार के विचार होते हैं नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार। अब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं लेकिन बहुत नहीं, खासकर मन जब विकारों के वश होता है, बुराइयों के वश होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत बदले की भावना निराशा, ये सब नकारात्मक स्थितियां हैं मन की, और जब ये विचार मन में आ जाते हैं तो ये विचार मन में आने के कारण मन कमजोर होता है, मन की शक्ति कई गुना नष्ट हो जाती है। कभी भी नेगेटिव सोचने के बाद हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं, मानो गुस्सा है, ज्यादा समय नहीं आता है, आपको दिन भर में एक दो बार गुस्सा आता होगा, कितना मिनट, 2 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा तो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन असर कितना समय रहता है, एक बार गुस्सा कर दिया तो घंटों मन अशांत रहता है। आप एकाग्रता को कोई कार्य करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, कोई निर्णय लेना चाहें तो लेना मुश्किल होगा, मन कमजोर हो जाता है, एक विष की तरह है, जैसे विष की थोड़ी मात्रा ही काफी होती है, अधिक मात्रा में विष नहीं चाहिए, ऐसे ही कोई भी विकार जीवन में प्रवेश होता है, थोड़ी मात्रा में ही वो जीवन में दुख अशांति ले आता है, और टेंशन भी इन्हीं की वजह से होता है, नेगेटिव थॉट्स ही टेंशन का कारण है। और आज मेडिकल साइंस कहती है 70% बीमारियां टेंशन से होती हैं। सबको पता है आज टेंशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, अल्सर की बीमारी, ये सब जो मुख्य मुख्य बीमारियां हैं उसके सोर्स में तनाव है, और तनाव का कारण नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स। ऐसे ही हम अच्छे विचार भी करते हैं, शुद्ध विचार भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं, जैसे नेगेटिव विचार हम कम करते हैं पर उसका असर ज्यादा होता है, ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स भी हम कम करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। वो हमारे मन को शक्तिशाली बनाते हैं, शांत करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हैं आशा, उत्साह, सफलता, स्वास्थ्य के विचार, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन के विचार, सेवा, दया, करुणा, प्रेम के विचार, ये सब विचार पॉजिटिव विचार कहलाते हैं। और जब हम ये विचार करते हैं तब कैसा अनुभव करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे ही मन शांत होता है मन की एकाग्रता बढ़ जाती है तो कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट हम दे पाते हैं। तो हम सब पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन जितना ये कहना आसान है उतना करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि मन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा मन इंद्रियों से संचालित होता है, हमने कुछ देखा मेरा मन सोचने लगा, मैंने कुछ सुना उस पर मेरे विचार चलने लगते हैं, हम जो पढ़ते हैं देखना सुनना पढ़ना बहुत निरंतर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हम देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हम, और आज तो मीडिया का जमाना है, बिना मीडिया के हमारा तो जीवन ही आज व्यतीत नहीं होता है। आज की दिनचर्या कैसे शुरू होती है, सुबह सुबह लोग चाय और अखबार या टेलीविजन में न्यूज, अब हाँ व्हाट्सएप। अब आपने जो भी संसार समाचार प्राप्त किए, दुनिया की सबसे बुरी खबरें मीडिया की सबसे अच्छी खबरें होती हैं। मेरे दिन की शुरुआत कैसे हो रही है, सारी रात हम सोए हैं, मन शांत है, उस समय मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है सवेरे के समय। और उस समय मैं अपने मन को क्या दे रही हूँ, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। इसीलिए बच्चों को भी कहते हैं ना सुबह सुबह स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, सवेरे सवेरे पढ़ाई करोगे तो अच्छा याद होगा, मन ने वो सब ग्रहण कर लिया, आप सारा दिन आप वही सोचने वाले हैं, वही बोलने वाले हैं, आपस में चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, वही जो मेरा इनपुट है। पुराने जमाने में लोग शायद ज्यादा बुद्धिमान होते थे, वो अपने दिन की शुरुआत इस तरह से नहीं करते थे, वो अपने दिन की शुरुआत भक्ति, पूजा, पाठ, ईश्वर के ध्यान से करते थे। तो मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था तो सारे दिन में कैसी भी परिस्थितियां आए उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है। जैसे मानो इस रूम को मैंने एयर कंडीशन कर दिया तो बाहर कितनी भी गर्मी है, मेरा कमरा तो ठंडा है, बाहर की गर्मी का प्रभाव मेरे कमरे में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही मन शांत और शक्तिशाली है तो फिर बाहर की परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हैं उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो हम आसानी से उस प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उतनी शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन आज के समय में हम परिस्थितियों के गुलाम हैं ना, जैसे परिस्थितियां व्यक्तियां हमें चलाना चाहते हैं वैसे चलाते हैं। मुझे आज किसी ने कहा आपने ऐसे ऐसे किया या कोई भी मेरी ऐसी बात मुझे कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरा मूड खराब हो गया। फिर कुछ दो घंटे के बाद कोई आया, उसने मेरी तारीफ की, मेरे बारे में कुछ अच्छी बात की तो हम खुश हो गए। थोड़ी देर वो खुशी चली, फिर कोई तीसरा आया और उसने कोई और समस्या सुना दी। तो सारे दिन में कितनी बार मेरे मूड बदल रहे हैं क्योंकि जैसे परिस्थितियां मुझे चला रही हैं वैसे मेरा मन चल रहा है। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम मन को परिस्थितियों के अनुसार नहीं लेकिन मन के अनुसार परिस्थितियों को परिवर्तन कर सके। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तब हमारे लिए ये संभव हो पाता है, लेकिन इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के, प्रतिदिन अभ्यास किए ये संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जंगल तो उगाए नहीं जाते हैं, लेकिन जंगल अपने आप उग जाते हैं। अगर फूलों का बगीचा लगाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही विचारों का जंगल मन हमारा बना हुआ है, उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है। परिस्थितियों, व्यक्तियों के कारण मेरा मन ऐसे विचारों से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे सुमन बनाना है, श्रेष्ठ मन बनाना है, जैसे फूलों का बगीचा लगाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही हमें अपने मन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत ही योग अभ्यास है, वो मेहनत ही ध्यान करना है। जब हम आत्म अवलोकन करते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, जिसे मैंने कहा अपने भीतर हम जाते हैं, तब हम मन को सही दिशा दे पाते, क्योंकि हम समझ पाते हैं मेरा मन किस दिशा में जा रहा है। आज तक हमें मन को देखने का अभ्यास ही नहीं है। अभी तक मैं नेगेटिव सोच रही हूं, ये भी हमें ज्ञान नहीं होता है। इन विचारों में मुझे अपने मन को नहीं ले जाना है, ये समझ भी हमें नहीं होती है। और सकारात्मक विचार, आध्यात्मिक विचार, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार कौन से विचार हैं, ये भी मुझे ज्ञान नहीं है। तो जब हम वो अभ्यास अपने मन को देते हैं तब मन कुशल होने लगता है, तब मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और हम जब चाहें जैसे चाहें अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करना ऐसे ही है जैसे बेलगाम घोड़ा या वायु के वेग को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दुनिया में देखो लोग असंभव कामों को संभव करते हैं तो तुरंत उनके लिए संभव नहीं हो जाता है। आज एक खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाता है, वो बिल्कुल असंभव से दिखने वाले प्रदर्शन करता है तो एक दिन में आ जाता है गोल्ड मेडल। उसके पीछे सालों का, प्रतिदिन का अभ्यास होता है, तब जाकर के वो प्रदर्शन कर पाता है। तो मन तो सूक्ष्म है, संसार की भौतिक उपलब्धियों के लिए भी हम इतनी मेहनत करते हैं, तो इस सूक्ष्म मन के लिए कुछ समय हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना? तो वो समय देना ही नहीं। तो आज सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या होता है, बहन जी टाइम ही नहीं है। मन को समय देना हम सबसे व्यर्थ समझते हैं, हमको लगता है टाइम वेस्ट हो गया हमारा, आधा घंटा बर्बाद हो गया, हम बैठे योग करने कुछ शांति तो मिली नहीं, क्या कहेंगे, बर्बाद हो गया या सफल हो गया? सफल हो गया, क्योंकि हमने अभ्यास किया। भले आपको शांति का अनुभव एक मिनट ही हुआ होगा, लेकिन मैंने अपने मन के लिए जो अभ्यास किया, प्रयास किया, वो मुझे आगे सफलता दिलाने वाला है। मानो एक दीवार को तोड़ने में मैंने 100 हथौड़े लगाए, 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटती है, तो क्या पहले के 99 हथौड़े बेकार गए? क्या कहेंगे? हर एक हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया है, तब 100वें हथौड़े में दीवार टूटी है। तो कोई भी प्रयास हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, वो प्रयास मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है, मेरे मन को समर्थ बना रहा है। तो सकारात्मक चिंतन करना योग अभ्यास से संभव हो पाता है। तो मन की शक्ति को समझना, उस मन की शक्ति को सही दिशा देना, मन की शक्ति को समर्थ बनाना, ये राजयोग से हम करते हैं। दूसरी आत्मा की शक्ति है बुद्धि की शक्ति। मन वकील की तरह है और बुद्धि जज है। तो हम देखते हैं जब कोर्ट में कोई केस पेश होता है तो वकील अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं, वकील उसका तर्क देते हैं, और उन्हीं तर्कों के आधार पर जज निर्णय लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है और अब क्या इसकी सजा होनी चाहिए। तो जीवन में जो भी कर्म हम करना प्रारंभ करते हैं, ये एक्चुअली वास्तव में प्रारंभिक अवस्था में हम एक अंतर्द्वंद से गुजरते हैं, यानी मन और बुद्धि का जो अंतर्द्वंद होता है, और उसके बाद एक बार निर्णय होने के बाद फिर वही कर्म हम बिना सोचे बार बार करते हैं और वही हमारा संस्कार बन जाता है। मानो कोई सिगरेट पीना शुरू करता है, एक सिंपल सा मतलब हैबिट है जो कोई इंसान जब अपने जीवन में पहली बार लेगा तो कैसे उसका मन अंतर्द्वंद से गुजरता है। बुद्धि से समझ है कि ये अच्छी आदत नहीं है, अगर सिगरेट पिएंगे तो हेल्थ पर बुरा असर होगा, धन का अपव्यय होगा, समाज की प्रतिष्ठा में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन मन क्या कहेगा? मन वकील की तरह काम करता है, तो मन कहेगा दोस्त सब ले रहे हैं, पार्टी में आए हैं, अब एक बार लेने में थोड़ी हेल्थ खराब हो जाएगी, अच्छा धन कमाते किस लिए हैं, थोड़ा तो अपने मौज शौक में खर्च कर सकते हैं। ये मन की बातें हैं। अब इन दोनों में जो शक्तिशाली है इंसान वो काम करेगा। अगर बुद्धि शक्तिशाली है तो कितना भी पार्टी है, कितने भी दोस्त कह रहे हैं मुझे नहीं करना है, माना नहीं करना है। और अगर मन हावी हो जाता है तो कितनी भी मुझे समझ है ये गलत है, मुझे नहीं करना है, लेकिन इंसान वो काम कर लेता है। आज दुनिया में अपराध होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, ऐसे नहीं उनको नहीं पता होता ये गलत है, लेकिन मन हावी हो जाता है। इसे कहते हैं अंतर आत्मा की आवाज। बुद्धि क्या है? वो अंतरात्मा की आवाज है, तो वो जरूर हमें सावधान करती है, लेकिन जब मन शक्तिशाली उस पर हो जाता है तो इंसान वो कार्य कर जाता है, और जब वो कर लेता है फिर उसका परिणाम तो भोगना ही है। तो वो कर्म हम करते हैं और वही कर्म हमारे संस्कार का रूप लेते हैं। तो आत्मा में दो तरह के संस्कार होते हैं, पहले तो निजी संस्कार है जिसके विषय में हमने चर्चा की है, दूसरे संस्कार कर्मों से बने हुए। अब वो कर्मों से बने हुए संस्कार कई तरह से बनते हैं। हमारे कुल के संस्कार, जिस कुल में जन्म लिया है वो माता पिता से हमें संस्कार मिलते हैं, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वातावरण से हमें संस्कार मिलते हैं, संघ, हमारा संघ भी हमें प्रभावित करता है। इसलिए कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है। एक अच्छा व्यक्ति बुरे संग में चला गया वो कब बुरी आदतों को अपना लेगा उसे भी समझ में नहीं आएगा, और एक बुरा व्यक्ति अच्छे संग में आ गया उसके अच्छा बनने की संभावना बढ़ जाती है। हम इतिहास में सुनते हैं डाकू जैसे लोग जब संत के संपर्क में आए वो भी संत बन गए। संत वाल्मीकि की कथा सुनी है आपने, मैं सुनाऊंगी नहीं। ऐसे ही डाकू अंगुलीमाल, बहुत खूंखार डाकू था, महात्मा बुद्ध के समय में था वो, और लोग उसके नाम से ही थर थर कांपने लगते थे, क्योंकि वो जिसको भी देखता था उसको काटकर उसकी उंगली अपने गले में पहनता था, इसलिए उसको अंगुलीमाल कहते थे। तो उसने ऐसे प्रतिज्ञा की थी कि मुझे 1000 अंगुलियों की माला अपने गले में डालनी है। तो महात्मा बुद्ध जब उस राज्य में पहुंचे जहां डाकू अंगुली माल का आतंक था, तो वहां के राजा ने प्रार्थना की महात्मा बुद्ध से कि मेरे राज्य में ऐसा डाकू है और मैं बहुत प्रयास करके भी उस डाकू को पकड़ नहीं पा रहा हूं, अगर आप मेरी कुछ मदद करें। तो उन्होंने उसको पूरा आश्वासन दिया और अगले दिन वो उस जंगल की तरफ गए जहां वो डाकू रहता था। तो उनके शिष्यों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, आप कहां जा रहे हैं, जानबूझ करके मौत के मुंह में जा रहे हैं, वो डाकू है, वो किसी की भी परवाह नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही जाऊंगा और मुझे मौत का कोई भय नहीं है, और वो गए और ऐसे ही हुआ, डाकू का ये क्षेत्र था और उससे तो हमेशा किसी ना किसी मनुष्य की तलाश रहती थी, और जैसे ही उसे लगा कि यहाँ कोई आ रहा है वो तुरंत सामने जाकर खड़ा हो गया कि हाथ में तलवार थी। पर उसने आज जिस इंसान को देखा वो बिल्कुल निर्भय, और उसने देखा वो बहुत प्रेम से बहुत करुणा से मेरी ओर देख रहा है। तो तलवार उठी हुई थी लेकिन मार नहीं पा रहा था वो, तो उसको लगा मेरे हाथ को क्या हो गया है। मेरे को तलवार चलाने में देर नहीं लगती है लेकिन इनकी जो शक्ति है वो मुझे कहीं रोक रही है। और फिर उसने पूछा आप कौन हो। तो महात्मा बुद्ध चुप रहे, पर उसने बुद्ध का नाम सुना हुआ था क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई भी इंसान मेरे सामने आता है वो भय से कांपता हुआ होता है। ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसके दिल में मेरे प्रति प्रेम हो, लोग मेरे प्रति नफरत ही लेकर आते हैं, तो ये जरूर वो हो सकते हैं। ऐसा उसने अंदाज लगाया और उसने आगे से बोला क्या आप महात्मा बुद्ध हैं। तो उन्होंने कहा ठीक पहचाना। और जैसे ही उसने सुना ये महात्मा बुद्ध हैं, उसने महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी सुना हुआ था वो उसने महसूस कर लिया कि ये सचमुच बुद्ध कैसे हैं, और उसने अपनी तलवार छोड़ के और उनके चरण छू ली। तो बोला मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप मेरा मार्गदर्शन करें। इतना केवल कुछ पलों का वो संपर्क उसने अंगुली माल के जीवन को परिवर्तन कर दिया। तो अच्छे संग में, इसलिए कई बार कहते हैं सत्संग में इतनी शक्ति होती है, संग मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। और ऐसे ही कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार भी आत्मा के अंदर होते हैं, क्योंकि आत्मा अजरम और अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हमारे यहाँ गीता में ये बात हजारों साल पहले कह दी गई, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, जिसे पानी गीला नहीं कर सकता, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है। विज्ञान कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, परिवर्तन होती है। तो आत्मा भी एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। और इसीलिए कहा आत्मा ने इस शरीर को वस्त्र की तरह धारण किया है, और जब ये वस्त्र पुराना होता है तो जैसे हम पुराने वस्त्रों का त्याग करते हैं ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करती है और नया शरीर धारण करती है। तो जब आत्मा नए शरीर में जाती है तो अपने पूर्व जन्मों के किए हुए संस्कार कर्म आत्मा के साथ जाते हैं, वो उसके रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग्स आत्मा के अंदर वो कर्मों की रहती हैं। कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, बहुत कम आयु में असाधारण प्रदर्शन करते हैं। एक 3 साल का बच्चा है श्लोक बोलना शुरू कर देगा, हालांकि अनकॉमन है लेकिन फिर भी। अभी एक छोटा बच्चा था कौटिल्य, उसको गूगल चाइल्ड कहते हैं, आपने सुना होगा शायद उसका नाम, किसी ने सुना है? हाँ सुना है ना। तो देखिए 5 साल की उम्र और दुनिया के कोई सवाल पूछ लो आप, सारे जवाब हैं उसके पास। तो इतना अभ्यास पूर्व जन्म का कहीं है जो इस जन्म में सिर्फ थोड़ा सा संपर्क मिलते ही वो योग्यता सामने आ जाती है। कुछ बच्चे हैं कंप्यूटर चलाने में, कुछ नृत्य करने में, कुछ गायन कला में, बहुत कम आयु में निपुण हो जाते हैं। उनके माता पिता भी नहीं समझ पाते कि इनके अंदर इतनी योग्यता कैसे है। तो ये पूर्व जन्म का अभ्यास जो इस जन्म में भी काम आता है। और ऐसे ही कई बार हम देखते हैं एक ही परिवार में 2-3 बच्चे हैं, वही माता पिता हैं, वही एनवायरमेंट है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वही शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लेकिन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग। एक होगा स्वभाव से बहुत ओबीडियंट, स्टूडियस, सिंसियर, माँ बाप को उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो दूसरा होगा वो बिल्कुल अपोजिट, कहते हैं वो इतना तूफानी होगा, हम बहुत कोशिश करेंगे उसको शांत रखने की, उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे, पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता है। अब माता पिता की सभी बच्चों के प्रति एक जैसी भावना है, लेकिन फिर भी सब बच्चे अलग अलग होते हैं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार जो आत्मा लेकर के आती है, विशेषकर 14 वर्ष की आयु तक उसका प्रभाव प्रबल होता है। आप कुछ भी कहेंगे ना, उनको वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो संस्कारों का प्रभाव है। लेकिन जब उसकी अपनी समझ विकसित होती है, तब वो अगर ये रियलाइज करते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, तो फिर अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं तो कई बच्चे बहुत बदल भी जाते हैं। नहीं तो ये पूर्व जन्मों का प्रभाव कई बार इस रूप में भी हम महसूस करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन फिर भी तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आज नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हुए हैं जो एक डेस्टिनी है आत्मा के लिए, और वो किसी ना किसी रूप में सामने आ जाते हैं। तो वो पूर्व जन्मों के संस्कार भी हमारे वर्तमान व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन संस्कारों को हम बदल सकते हैं, और उसके लिए भी हमें योग अभ्यास मदद करता है। योग अभ्यास में हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में रियलाइजेशन करते हैं, क्योंकि ये संस्कार सब कॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं, और जब हम योग करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, और उस समय जो संकल्प हम अपने मन को देते हैं, मानो मुझे अपने क्रोध के संस्कार में परिवर्तन लाना है, तो मैंने अपने आप को समझाया कि क्रोध मेरा संस्कार नहीं, शांति मेरा निजी संस्कार है, शांति मेरा स्वभाव है। उस समय अपने मन को मैंने ये विचार दिया, अब जब भी क्रोध की स्थिति पैदा होगी तुरंत वो थॉट मेरे सामने आएगा और मेरी क्रोध की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही वो शांति का विचार आया, क्रोध की तीव्रता कम होगी, हो सकता है एकदम समाप्त ना हो, लेकिन उस तीव्रता में अंतर आएगा, और धीरे धीरे यदि हमने रोज वो अभ्यास अपने आप को दिया तो मेरा क्रोध का संस्कार समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा मुश्किल है संस्कारों को बदलना, आदतों को बदलना शायद इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि हम कुछ अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे वो संस्कार बदलने लगते हैं। आत्मा का स्थान शरीर है, यहाँ भ्रकुटी में, मस्तक के मध्य में, दोनों भौहों के बीच में आत्मा स्थित है। आत्मा इस शरीर के लिए एक ड्राइवर की तरह है, तो जैसे कार में ड्राइवर का स्थान निश्चित होता है, वो कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर ही कार चला सकता है, अगर वो पीछे की सीट पर बैठकर कार चलाना चाहेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी ड्राइविंग के साधन हैं वो उस सीट पर हैं। ऐसे ही आत्मा के लिए शरीर को कंट्रोल करने की सभी इंद्रियां, सभी अंग मस्तक पर हैं, खासकर मस्तिष्क जो आत्मा के लिए कंट्रोल रूम की तरह है, जो एक परसेप्शन ऑर्गन है, और हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, मुख, जिह्वा, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी मुख पर हैं, और इसीलिए आत्मा यहाँ है, और इसके प्रतीक के रूप में हम बिंदी लगाते हैं, क्योंकि आत्मा एक ज्योति बिंदु चमकते हुए सितारे के समान है, जैसे इंदिरा बहन सुना रही थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आत्मा एक सितारे के समान है, चमकते हुए सितारे के समान, जिसके लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन हृदय एक अंग है, जो ब्लड पंप करता है, हृदय ब्लड बनाता भी नहीं है, ब्लड को साफ भी नहीं करता है, सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है। और आज हार्ट की सर्जरी हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक व्यक्ति का हार्ट दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी लगाते हैं, तो उसे व्यक्ति नहीं बदल जाता है। तो हृदय का संबंध हमारी भावनाओं से नहीं है, लेकिन मन का संबंध हमारी भावनाओं से है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, वही हमारी भावनाएं होती हैं। यदि मेरे मन में खुशी के विचार चल रहे हैं तो मेरी भावनाएं कैसी होंगी? खुशी की हो जाएंगी। अगर मेरे मन में दुख के विचार चल रहे हैं तो मेरी भावनाएं दुख की हो जाएंगी। तो वो उस पर निर्भर करता है। और मन आत्मा की शक्ति है, और इसीलिए जब हम गहरे विचार में होते हैं तो कहाँ आ जाता है? यहाँ नहीं जाता, कहाँ जाता है? क्योंकि हम सोच कहाँ से रहे हैं? यहाँ से। तो मन का स्थान आत्मा में है, और नेचुरल रूप से हम हाथ यहाँ ले जाते हैं। भाग्य की बात करते हैं तो भी हाथ यहाँ जाता है, क्योंकि भाग्य का संबंध भी आत्मा से है, कर्मों का संबंध भी आत्मा से है। मंदिर में जब हम जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, तो हम अपना जूता चप्पल बाहर उतारते हैं, कोई चमड़े की चीजें होती हैं वो भी सब बाहर छोड़ते हैं, और अंदर जाकर तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक अधिकतर मंदिरों में दिया जाता है। तो उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वास्तव में भगवान के सामने हमें अपने देह अभिमान का त्याग करके जाना है। लेकिन हम वो देह अभिमान का त्याग कैसे करें, उसकी समझ नहीं है। तो हम चमड़ा, ये शरीर चमड़े का बना हुआ है ना, तो वो उसका त्याग करने की बजाय, यानी उसके भान को छोड़ने की बजाय, हम जूते चप्पल जो चमड़े की चीजें हैं उन्हें बाहर छोड़ देते हैं, फिर अंदर जाकर तिलक लगाते हैं। वो आत्मिक स्मृति, वास्तव में मैं आत्मा हूं जो इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति है। तो मैं आत्मा के भाव से जब ईश्वर के सामने खड़ी होती हूं, तब मेरे भाव ईश्वर तक पहुंचते हैं। और फिर चंदन के तिलक का भावार्थ ये है, चंदन शीतल होता है, सुनहरा होता है और सुगंधित होता है। तो शीतल और सुनहरा, सुनहरा रंग पवित्रता का प्रतीक है, शीतलता शांति का प्रतीक है, और सुगंध गुणों का, आत्मा के जो निजी गुण हैं वो उसके जीवन को सुगंधित करते हैं। तो उस भाव से मुझे ईश्वर की आराधना करनी है। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, तो इस भाव से हम ईश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अभी मुझे कहा गया है कि मैं 5 मिनट में आपका ये पूरा करूं, तो अभी हम आत्मा के संबंध में एक और जिज्ञासा जो हमारे मन में होती है, आत्मा इस संसार में कहां से आई है? हम जन्म लेते हैं और मृत्यु भी होती है, और कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये जग मुसाफिर खाना है। तो कहां से आए हैं और कहां जाना है? तो इस सवाल का उत्तर आपको यहां बताया गया है। 3 लोक हैं इस जगत में। एक ये भौतिक जगत है, जिसमें सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, और हमारे विज्ञान की पहुंच भी ग्रहों उपग्रहों तक ही है, उससे आगे विज्ञान की भी पहुंच नहीं है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो भौतिक जगत है, यहां तक हम देखते हैं और जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन है, और इसे हम कहेंगे ये एक विशाल रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है, जहां आत्माएं इस शरीर रूपी वस्तु को धारण करके अपना पाठ लेकर रही हैं। लेकिन इससे परे जो दूसरा लोक है वो सूक्ष्म लोक है, जहां आत्मा हड्डी मांस के शरीर में नहीं होती है, प्रकाश की काया में होती है, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। और वो मृत्यु के पश्चात कुछ समय आत्मा उस प्रकाश की काया में होती है, सूक्ष्म वतन। और उसके ऊपर जो तीसरा लोक है इसे ब्रह्मलोक, परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, इन नामों से पुकारते हैं। ये ब्रह्मलोक है क्योंकि ये ब्रह्म महातत्व से बना हुआ है, जो स्वप्रकाशित तत्व है, छठा तत्व है। पांच तत्व इस प्रकृति के हैं और वो जो ब्रह्म महातत्व है वो परम धाम का तत्व है। तो आत्माएं सभी इस परम धाम में, ब्रह्मलोक में निवास करती हैं, जहां आत्मा देह, देह के संबंध और देह के कर्मों से पूर्णतया मुक्त है। अपने मूल स्वरूप में आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, इसी स्वरूप में आत्मा परम धाम में निवास करती है। आप देख रहे हैं चित्र में स्टार्स, परम धाम में स्टार की तरह आत्माएं हैं जो आत्मा की बीज रूप स्थिति है। बीज रूप स्थिति सुषुप्त अवस्था है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है लेकिन हम देख नहीं सकते, आप बीज को तोड़ लो आपको वृक्ष दिखाई देगा उसमें? जब हम बीज को जमीन में डालेंगे तब वो अंकुरित होगा और फिर हमें समझ में आएगा कि ये इसके अंदर वृक्ष था। ऐसे ही आत्मा के अंदर सर्व स्मृतियां, सर्व संस्कार, अनेक जन्मों के पार्ट समाये हुए हैं, लेकिन परम धाम में आत्मा बिल्कुल सुषुप्त है। संकल्प भी नहीं है वहां, विचार भी नहीं चलते हैं। जैसे ही उसे देह रूपी जमीन मिलती है, यानी जब उसे शरीर प्राप्त होता है, तब सभी कुछ प्रकट होने लगता है। वो अभिव्यक्ति इस शरीर के माध्यम से होती है। तो सुख दुख का अनुभव, शांति अशांति का अनुभव, उसका माध्यम शरीर है। आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं और बिना एक दूसरे के दोनों का ही अस्तित्व बेकार है। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर मृत है, और यदि आत्मा को शरीर नहीं है तो आत्मा भी कुछ अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है। तो परम धाम में आत्मा संपूर्ण मुक्ति की अवस्था में, ये निर्वाण धाम है क्योंकि ये वाणी से परे है। इसे सातवां आसमान भी कहते हैं, कोई उसे हेमनली अबोर्ड भी कहते हैं। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन आत्मा का निवास स्थान, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है तो इस भौतिक जगत से परे है, ऐसा स्वीकार किया गया है। अपने यहाँ अनेक योगियों को साक्षात्कार होते हैं और उन्होंने साक्षात्कार में इसका अनुभव किया है। परमात्मा के द्वारा जो उन्हें साक्षात्कार कराया गया उसमें उन्होंने देखा कि परम धाम में सभी आत्माएं निवास करती हैं, और जब उनका समय होता है इस रंगमंच पर, इस सृष्टि पर आकर के अपना पाठ बजाने का, तो हम आती हैं और शरीर धारण करती हैं। तो ये था आत्मा की सत्य पहचान, कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप चमकते हुए सितारे के समान अति सूक्ष्म है, जिसे हम नेत्रों से नहीं देख सकते। यहाँ प्रकृति में मस्तक के मध्य में शरीर में आत्मा निवास करती है। जब हम योग अभ्यास करेंगे तो हम पहले मन को आत्मिक स्मृति में स्थित करते हैं, हम आत्मचिंतन करते हैं, तो हम अपना ध्यान मस्तक के मध्य में एकाग्र करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्थान शरीर में स्थान पर है और आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई है, और अपने मूल स्वभाव में आत्मा सतोगुणी है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, ये आत्मा का निजी स्वभाव है, और उस स्वभाव में हम सहज ही स्थित हो सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। थोड़ा योग कराएं दो मिनट। तो अभी दो मिनट हम आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। आप सभी सीधे होकर बैठेंगे, अपने मन को आसपास के वातावरण से, आवाजों से, न्यारा कर लें, तैयार करें मन को आत्मचिंतन के लिए, स्वयं को मस्तक के मध्य में एक चमकते हुए सितारे के समान महसूस करें। मैं एक चेतनीय शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने कर्मेंद्रियों का, इस देह का आधार लिया है। अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है, जहाँ सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है। मन को ले जाएं इस भौतिक जगत से पार ब्रह्मलोक में, जहाँ संपूर्ण शांति है, पवित्रता है, प्रकाश है, दिव्यता है। महसूस करें यहाँ मैं आत्मा मुक्ति की अवस्था में हूँ। ये मेरा असली घर है। मेरे पिता परमात्मा परम धाम निवासी हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और उस शांति को अनुभव करते हुए आ जाएं पुनः इस भौतिक जगत में। आज पूरा दिन मैं स्वयं को ये स्मृति दिलाऊंगी, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध और पवित्र हूँ। ओम शांति शांति।
ओम शांति। हम सब करतल ध्वनि से आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। आपने बहुत सहज रीति से आत्मा का अनुभव भी कराया तथा पहचान भी दी।